पृष्ठ 40 मोहन राकेश कहानी लेखन का प्रारंभ और प्रतिपत्तियां। नई कहानी की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से नहीं हुई है, उसकी एक पीढ़ी है और उस पीढ़ी की प्रगतिशील दृष्टि है। इस दृष्टि के वाहकों में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी और मार्कंडेय आदि का नाम शीर्ष पर स्थित है। इस पीढ़ी के कहानीकारों ने जीवन की विसंगतियों, विडंबनाओं और त्रासदियों से सीधा साक्षात्कार करके अपनी प्रामाणिक अनुभूतियों को प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि ये सभी नए कहानीकार परिवेश से प्रतिबद्ध हैं। इनका मानस सजग है, आंखें खुली हैं और प्रज्ञा और संवेदना के स्तर सजग हैं। तभी तो ये मानवीय स्थितियों और संबंधों को यथार्थ की कलम से उकेर सके हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की दृष्टि में ये ऐसे कहानीकार हैं जो पुरानों को नए तक पहुंचाने में समर्थ हैं। एक दूधनाथ सिंह की दृष्टि में इनमें राकेश का नाम सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि उसकी रोटी की पुरातनता से मिस पाल और परमात्मा का कुत्ता की आधुनिकतम हास्यास्पदता और व्यंग का चित्रण राकेश को एक मौलिक और जेन्युइन लेखक के रूप में प्रस्तुत करता है। दो नई कहानी के विशिष्ट हस्ताक्षरों में राकेश का नाम और स्थान निर्विवाद है। जो कहानियां संवेदना और शिल्प के धरातल पर मौलिक, नवीन और अपरिहार्य हैं, उनमें राकेश की कहानियों की गणना की जा सकती है। आलोचकों और पाठकों में राकेश की कहानियां बहुचर्चित, बहुपठित और लोकप्रिय रही हैं। यथार्थ को पकड़ने की दृष्टि, जीवन का गहरा बोध और अनुभव का अपनापन व अभिव्यक्ति की प्रसन्नता राकेश की कहानियों के ऐसे गुण हैं जो सभी कहानीकारों में नहीं मिलते हैं। सैद्धांतिक आग्रह से परे अनुभव की सच्चाई को उसको संप्रेषित करने वाला शिल्प राकेश की सभी कहानियों में मिलता है। वर्तमान भारतीय जीवन जिन संकटों, अंतर्विरोधों व असंगतियों से गुजरा है, नोट उपेंद्रनाथ अश्क कहानी के इर्द गिर्द पृष्ठ 65। दो दूधनाथ सिंह कहानी के इर्द गिर्द में प्रकाशित अश्क के इंटरव्यू से उद्गृत पृष्ठ 65। पृष्ठ 41 उसका सटीक, वास्तविक और इमानियत भरा अभिव्यंजन राकेश की कहानियों में सहज सुलभ है। स्वातंत्र्योत्तर काल में विकसित भारतीय जीवन के सही परिदृश्य और व्यक्ति की आंतरिकता के विभिन्न स्तरों का उद्घाटन करती हुई राकेश की कहानियां जीवन की समग्रता को प्रस्तुत करने वाली कहानियां हैं। क्यों न हो, उनका समग्र लेखन प्रारंभ से ही व्यक्ति के परिपक्व, अपरिपक्व मानस की अनुभूतियों का प्रतिफलन है। कहानी लेखन प्रारंभ और विकास। राकेश के कहानी लेखन की यात्रा का प्रारंभ सन 1944 से माना जा सकता है। उन्होंने पहले पहल 19 वर्ष की आयु में ही नन्ही नामक कहानी लिखी थी जो अप्रकाशित ही रह गई। सारिका मार्च 73 में उसे पहली बार राकेश के मरणोपरांत इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया गया है, यह राकेश की शायद प्रथम कहानी है। उन्हीं की हस्तलिपि में प्राप्त स्कूल की परीक्षाओं की लंबी कॉपी के कागजों पर लिखी हुई यह 7 मई 1944 में लाहौर में लिखी गई थी। इसकी पांडुलिपि पर तरह तरह से राकेश लिखकर देखा गया है। संभवतः यह प्रक्रिया उपनाम चुनने की रही है जो बाद में उनका नाम ही हो गया है। इसके बाद 1946 में उनकी एक कहानी भिक्षु के नाम से प्रकाशित हुई। यही वह कहानी है जो राकेश की डायरी के अनुसार उनकी प्रथम प्रकाशित कहानी मानी जा सकती है। इसके बाद राकेश की कहानियों का प्रकाशन पहले धीमी गति से हुआ, फिर तीव्रता के साथ। कमलेश्वर ने 7 ऐसी कहानियां भी प्रकाशित की हैं जो राकेश की डायरी से मिली हैं। इनमें 2 सन 1951 की रचनाएं हैं जिनके नाम क्रमशः बनिया बनाम इश्क और गुमशुदा हैं। शेष कहानियों में अर्धविराम, पंप, लड़ाई और लेकिन इस तरह आदि का नाम लिया जा सकता है। राकेश ने इनमें से कुछ को तो स्वयं ही संशोधित और परिमार्जित कर दिया था, किंतु कुछ को थोड़े बहुत परिवर्तन, रूपांतर और सुधार के बाद कमलेश्वर ने उनकी डायरियों से खोजकर सारिका के मोहन राकेश स्मृति अंक में प्रकाशित किया है। राकेश की कहानियां कहानी क्षेत्र में आए नवीन मोड़ का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें जीवन के माध्यम से कहानी और कहानी के माध्यम से जीवन की खोज की गई है। आज की स्थितियां किस प्रकार और किन स्तरों पर कहानीकार को छूती हैं, इसका आकलन वस्तुतः समाज के नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पृष्ठ 42 परिचय प्राप्त कराता है। राकेश की कहानियां समाज के परिप्रेक्ष्य में उनकी जीवन संचेतना को व्यक्त करती हैं। उनकी अधिकांश कहानी आज़ादी के बाद के वर्षों में लिखी गई कहानियां हैं। तब से अपने अंतिम रूप तक में राकेश निरंतर एक कथा यात्रा से गुजरे हैं। इसमें अनेक स्तरों व पड़ावों पर विरमते, प्रतिक्रिया ग्रहण करते, यथार्थ की आँख से जीवन की अनेक स्थितियों को देखते हुए राकेश अपने अंतिम समय में कहानी कला के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गए थे। राकेश की कहानियों में मानव संबंधों की व्याख्या है, नए जीवन मूल्यों के ग्रहण की ललक है और यथार्थ का तीखा और सूक्ष्म बोध है। इसके साथ ही राकेश के कतिपय कहानी प्रयोग भी हैं जो उनकी नित नवीनता और मौलिक दृष्टि को सूचित करते हैं। कहानी सर्जकों में उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, दूधनाथ सिंह, कमलेश्वर और आलोचकों में डॉक्टर लक्ष्मण दत्त गौतम और डॉक्टर श्याम सुंदर घोष ने उन्हें एक सुलझा हुआ नवीन चेतना को वाहक कहानीकार स्वीकार किया है। राकेश वस्तुतः एक यथार्थ दृष्टा, प्रयोगशील और नई संवेदना शिल्प के कहानीकार थे। उनकी कहानियों में जीवन के विविध स्तरों का सच्चा स्वरूप रूपायित है। लेखन के प्रारंभिक वर्षों में राकेश ने जो कहानियां लिखी हैं, उनमें उनके तत्कालीन परिवेश व प्रतिक्रियावादी मानस की भूत अनुभूतियों का प्रतिफलन है। कट्टर सनातनी परिवार, अच्छी और ऊंची शिक्षा, विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न परिवेश की टूटन उखड़न तथा उनकी मनमौजी व यायावरी वृत्ति के वृत्त में आते गए संघर्ष, अंतः संघर्ष राकेश की कहानियों में कभी सीधे सादे, कभी करुण व मार्मिक और कभी तीखे प्रतिक्रिया बोध के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। कहानी विषयक मान्यताएं और प्रतिपत्तियां। राकेश ने आधुनिक कहानी को मोड़ दिया है। वे जीवन बोध के कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में जो जीवन अभिव्यक्त हुआ है वह हमारी आसपास की स्थितियों से संबंध रखता है। एक सर्जक के रूप में राकेश जितने सफल हैं, विश्लेषण और चिंतक के रूप में भी उतने ही सुलझे और संतुलित हैं। उनकी मान्यताओं, स्थापनाओं और विचारणाओं में मौलिकता है। वे कहानी ही नहीं लिखते रहे अपितु उसके स्वरूप, संगठन, शिल्प और समूचे तंत्र से संबंधित पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करते रहे। उनके कहानी विषयक चिंतन, स्वरूप निर्धारण और प्रावृत्तिक विवेचन में उनकी अनेक प्रतिपत्तियां निहित हैं। समय समय पर लिखे गए लेखों, निबंधों, गोष्ठी प्रसंगों में अभिव्यक्त मतों और पत्र पत्रिकाओं में छपे विचारों से राकेश की नई कहानी विषयक मान्यताओं को समझा जा सकता है। यहाँ इसी आधार पर राकेश की एतद्विषयक प्रतिपत्तियां प्रस्तुत हैं। पृष्ठ 43। एक, मोहन राकेश की दृष्टि में कहानी युग की प्राण शक्ति को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, परंतु जिस पाठक के लिए वह लिखी जाती है उसकी सीमाएं और अपेक्षाएं भी हैं। पाठक की सीमाओं और अपेक्षाओं के प्रति उदासीन रहकर की गई रचना केवल रचयिता के अहम को परितुष्ट कर सकती है, अपने वास्तविक उद्देश्य की सिद्धि तक नहीं पहुंच पाती। राकेश की इस मान्यता के संबंध से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि कहानी युग की अभिव्यंजना के साथ साथ पाठकों से भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। कहानीकार की संवेदना का पाठकीय संवेदना के में रूपांतरण और पाठकीय दृष्टि का कहानीकार में होना सफल कहानी का गुण है। इसलिए राकेश यह भी मानते थे कि कहानी में जीवन के विराट को प्रतिबिंबित करने के साथ साथ यह दृष्टि भी बनाए रखनी चाहिए कि कहानी कहना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु पाठक में उसके लिए आग्रह पैदा करना भी वांछित है। 2. राकेश जीवन और कहानी के परस्पराशी व परस्पर संबंधित होने के समर्थक थे। राकेश की मान्यता थी कि नई कहानी जीवन की स्थिरता को अभिव्यंजित करने वाली विधा नहीं है, अपितु वह तो जीवन के पल पल बदलते संदर्भों और स्पंदनों को व्यक्त करने का माध्यम है। कहानी का विषय व्यापक जीवन क्षेत्र है। राकेश की यह मान्यता अज्ञेय और ज्ञानेंद्र के मान्यताओं के विपरीत है, जहां ये दोनों कहानी को वैयक्तिक और पारिवारिक परिवेश के विविध स्थितियों में ही घुमाते रहे, वहां राकेश ने यह कहा, निरंतर कुलबुलाते और संघर्ष करते सामाजिक पार्श्व का एक व्यापक भाग अछूता रहा है, जिसकी पहचान और पकड़ हमारे लेखकीय दायित्व का महत्वपूर्ण अंश है। 3. जीवन व्यापी संघर्ष स्थितियों के बदलाव के साथ साथ अधिकाधिक जटिल और पीड़ादायक हो जाता है। कहानीकार से पहली अपेक्षा ही यह होनी चाहिए कि वह समूचे परिदृश्य को उसकी वास्तविकता के साथ अनुभव करता हुआ कलात्मक रूप में प्रस्तुत करे। आज का कहानीकार यदि इसे स्वीकार करके चले तो उसकी रचना की बुनावट गाढ़ी और प्रभावी हो सकती है। इसी अनिवार्यता पर बल देते हुए राकेश ने नए बादल की भूमिका में लिखा है, वास्तव में जीवन की संकुलता आज के लेखक के लिए चुनौती है। वह इस चुनौती को स्वीकार करे और जीवन की गहराई में नीचे तक जाने का साहस करे तो वह किसी भी समय की रचना से सूक्ष्मतर रचना कर सकता है, क्योंकि बीते कल की रचना से सूक्ष्म पृष्ठ 44 रचना की उपलब्धियां आज के लेखक के लिए आदर्श नहीं आरंभ का संकेत हैं। 1. 4. परिवेश के प्रति सजग और सतर्क बने रहने को राकेश ने पर्याप्त महत्व दिया है। उनके हर निबंध में जो कहानी से संबंधित है प्रायः ऐसी ही मान्यता व्यक्त की गई है। परिवेश में संकलित समय और यथार्थ के शिल्प में नामक निबंध में राकेश ने इसी मान्यता को इन शब्दों के सहारे अभिव्यक्त किया है, मेरे लिए नई कहानी की दृष्टि अपने संदर्भों में रहकर उनके अंदर से अपने समय और परिवेश को आंकने की दृष्टि है, जो हर बार हर नए प्रयोग में यथार्थ को उसकी सजीवता में व्यक्त करने की एक नई कोशिश करती है। जहाँ यह कोशिश नहीं केवल दोहराव है, वहाँ कहानी हो सकती है नई कहानी नहीं। 2. स्पष्ट है कि नई कहानी के संबंध में राकेश अपने समय और उसके वक्ष पर फैले परिवेश को बांधने में के पक्ष में है। जहाँ परिवेश के प्रति यह सजगता है, एक कॉन्शियस दृष्टि है, वहीं नई कहानी की भूमिका तैयार हो सकती है। इस दृष्टि बिंदु से नई कहानी एक दृष्टि है, मनुष्य को इसके सामाजिक यथार्थ के अंदर से देखने की, उस यथार्थ को यथार्थ रूप के में स्वीकार करने की और साथ ही उस संघर्ष की जो मनुष्य को उसके आज के यथार्थ से आगे कल के यथार्थ की ओर ले जाती है। 3. 5. राकेश ने नई और पुरानी कहानी को भी अलग अलग करके देखा है। उनके अनुसार सतह से देखा जाए तो भले ही आज का भारतीय जीवन शिथिल और गतिहीन प्रतीत हो, पर सतह के नीचे उसमें इतनी हलचल है जितनी पहले कभी नहीं रही। स्थिति की गंभीरता ने जीवन को भीतर से झिंझोड़ दिया है। 4. परिणामतः नई कहानी पुरानी से न केवल यथार्थ के बहुआयामी धरातल पर भिन्न है, अपितु वह भाषा और शिल्प संचेतना के स्तर पर भी भिन्न है। 6. राकेश ने अपनी नई कहानी विषयक मान्यताओं की प्रस्तुति के समय इसके नामकरण पर भी विचार किया है। वे यह मानते हुए भी कि कहानी के नामकरण की बात को लेकर इतनी खींचतान हो चुकी है कि इस बारे में और लिखना अब बेमानी लगता है, कहते हैं, नई कहानी नाम तो मात्र एक अनुबंध है। प्रश्न वास्तव में दो अलग अलग दृष्टियों का है। नई कहानी के साथ शब्द नई का प्रयोग केवल विभाजन की सुविधा के लिए है। नोट एक, नए बादल की भूमिका, पृष्ठ 23। दो, राकेश, परिवेश, पृष्ठ 203। तीन, मोहन राकेश, परिवेश, पृष्ठ 204। चार, मोहन राकेश, नए बादल की भूमिका, पृष्ठ 12। एक सीमांत के बाद कहानी के विकास, पृष्ठ 45 की अलग दिशा का संकेत देने के लिए। मैं नहीं समझता कि आज के कहानीकार को इस बात का मोह होगा कि उसकी कहानी भविष्य में कहानी के रूप में न जानी जाए, नई कहानी के रूप में जानी जाए। हाँ, उसका यह चाहना और दावा करना कि उसके आज के प्रयोग पहले प्रयोगों से भिन्न है, उसका दुराग्रह नहीं है। एक साथ राकेश की मान्यता है कि कहानी लेखक का दायित्व अपने समय के प्रति होना चाहिए, कारण समय के यथार्थ के विविधता के अंतर्गत एक सूत्रता का निर्देशन करने और निर्माणात्मक तथा विध्वंसात्मक शक्तियों की बहुमुखता के अंतर्गत उनकी एक रूपता का परिचय देने का दायित्व प्रमुखतः कहानी लेखक पर ही आता है। आगे चलकर देखें तो राकेश ने कहानी के यथार्थ को किसी एक खंड में सीमित नहीं किया है। वे जीवन को एक सामूहिक इकाई मानते हुए कहते हैं कि जो शक्तियां इसे बनाने या बिगाड़ने में कारण बन रही हैं, उन्हें किसी एक या दूसरे प्रकोष्ठ में बंद करके नहीं देखा जा सकता है। यथार्थ की पकड़ का अर्थ किसी एक खंड के बाहरी रूप का वर्णन करने की क्षमता नहीं है। जीवन के यथार्थ पर लेखक, कहानी लेखक के यथार्थ का अर्थ है जीवन के सभी खंडों को समान या न्यूनाधिक रूप में प्रभावित करने वाली शक्तियों की पकड़। दो, तात्पर्य यह है कि राकेश के अनुसार जो कहानी लेखन जीवन को उसके समस्त खंडों, रूपों और प्रभावित अप्रभावित करने वाली शक्तियों के रूप में पहचानता है, वही यथार्थ का चितेरा और जीवन का कहानीकार होने का दावा कर सकता है। आठ, चरित्र कहानी के लिए न केवल महत्वपूर्ण है वरन वे उसकी अहम आवश्यकता भी हैं। राकेश भी चरित्र को कहानी के लिए पहली चीज मानते थे। उनकी मान्यता थी कि सफल चित्रांकन का अर्थ है उन्हें उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एक सजीवन और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना। ऐसा इसलिए कि कहानी निस्संदेह कुछ अभिजात, उदास और उदार व्यक्तियों की जीवन गाथा नहीं है और स्ट्रक्चर और टेक्सचर पहली चीज कहानी का यान है। वह तंतुवाय जो आज का यथार्थ है, एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के जीवन का यथार्थ नहीं। तीन, चरित्रों के संबंध से कहानी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कहानी लेखक चरित्रों और उनकी परिस्थितियों के विधान में कहां तक। नोट एक, मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 48। दो, मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 34। तीन, मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 40। पृष्ठ 46 निसंग, तटस्थ और अयुक्त रह पाता है और अपनी घृणा या संवेदना की अभिव्यक्ति परिस्थितियों के वैज्ञानिक विश्लेषण या संगठन द्वारा ही करता है। एक, कहानी में लेखक की यह निवैयक्तिक दृष्टि ही सही चरित्रों को की प्रस्तुति कर सकती है। कहानी में आए चरित्रों को दुर्बल या सबल चित्रित करना महत्वपूर्ण नहीं है और न परिस्थिति की संकुलता या असंकुलता को चित्रित करना ही अर्थ रखता है। यह सभी आवश्यक है, कारण असुंदर से दूर सुंदर का और संकुल से अलग असंकुल का व निर्बल से अलग सबल का कोई अर्थ नहीं है। जीवन की विकासमान धारा में सभी कुछ एक साथ बहा करता है, अतः कहानी में भी उसकी अभिव्यंजना इसी रूप में होना श्रेयस्कर है। नौ, राकेश ने जहां कहानी के संबंध में चरित्र परिस्थितियों यथार्थ परिवेश की पकड़ और कहानी के रूप प्रेरक तत्वों व नामकरण के संबंध से अपनी सैद्धांतिक मान्यताएं व्यक्त की हैं, वहीं उसके शिल्प के संबंध में भी कई मार्के की बात कही हैं। उनकी दृष्टि में जो लोग महज शिल्प के स्तर पर चौंकाने वाले प्रयोग करते हैं वे बाजारू प्रयत्न हैं। शिल्प की पहली आवश्यकता भाषा है। भाषा अनुभूतियों के भीतर से जन्म लेती है। अनुभूतियां जैसी और जितनी गहन होंगी उतनी ही गहन व अर्थवान शब्दावली वे अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुन लेंगी। कारण अनुभूति अनभिव्यक्त रह ही नहीं सकती है। यह बात अलग है कि उसकी अभिव्यक्ति कभी शब्दों से, कभी चुप्पी से, कभी मुखमुद्रा से और कभी किसी चेष्टा से या अंतर में उद्वेलित किसी विकास के रूप में हो। इसका अर्थ यह हुआ कि शिल्प की संभावनाएं अनिवार्यतः अनुभूति में अंतर्निहित होती हैं। राकेश ने लिखा है कि कला के शिल्प को कला की वस्तु या कलाकार की अनुभूति से अलग करके देखना भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि अनुभूति का अपना ही एक शिल्प होता है जिसकी अपने माध्यम की सीमाओं में हर कलाकार खोज करता है। अतः शिल्प को तराशने या बदलने की बात सवाल बनकर मेरे सामने नहीं आती है। सामने आती है यथार्थ और उसकी अनुभूति को उसके शिल्प में व्यक्त करने की बात, जो हर एक के लिए हर बार एक नई चुनौती हो सकती है। दो, तात्पर्य यह है कि शिल्प अनुभूति का आत्मज है। जिस प्रकार आत्मज अपने पिता के अनुवांशिक गुणों को अपने रक्त में लेकर आता है, भले ही परिवेश के बदलाव के कारण कतिपय अन्य नए गुणों का विकास भी कर ले, ठीक उसी प्रकार अनुभूति के ताप में तप कर भाषा स्वतः ही तदनुकूल रूप लेकर आ खड़ी होती है। नोट एक, मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 33। दो, मोहन राकेश, परिवेश और संकलित निबंध, समय और यथार्थ के शिल्प में, पृष्ठ 202। पृष्ठ 47। कहानीकार की भाषा और शिल्प संयोजना में जब यह गुण आ जाता है तो वही सच्ची भाषा होती है। इसी के लिए राकेश ने कहा है कि लेखक की भाषा उसके और पाठक के बीच कहानी कहने और सुनने वाले किसी घनिष्ठता उत्पन्न करने का एक साधन है। यदि भाषा में यह घनिष्ठता उत्पन्न करने की योग्यता न हो तो कहानी की रचना का उद्देश्य ही पूरा होने से रह जाएगा। एक दस, राकेश ने लेखन को एक अर्धचेतन प्रक्रिया माना है। वे कहते हैं कि लेखन दार्शनिक या वैज्ञानिक की तरह तर्क या प्रयोग के आधार पर दिशा नहीं देता है। चूंकि लेखन को मैं एक अर्धचेतन प्रक्रिया मानता हूँ, इसलिए यह भी मानता हूँ कि दिशा देने या दिशा देनी चाहिए का बोध रचना प्रक्रिया में नहीं होता। लेखक के मन में या तो समर्पण की भावना होती है या फिर विद्रोह की। साहित्य में हमेशा दो दिशाएं रहती हैं, समर्पण की दिशा और नकारने या विद्रोह की दिशा। मेरी दिशा दूसरी है, क्योंकि मेरे लिए वह अनिवार्य है। जिस दिन मुझे जूझने की आकांक्षा नहीं रहेगी उस दिन लिखने की आकांक्षा भी नहीं रहेगी। दो ग्यारह, पिछले दशक में लेखकीय प्रतिबद्धता का प्रश्न भी पर्याप्त चर्चित रहा है। जहां कमलेश्वर लेखक की प्रतिबद्धता को उसकी आस्था से जोड़ते हैं तो राजेंद्र यादव उसे युग सत्य से मुद्रा राक्षस जैसे कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि लेखक कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं होता है। इस संदर्भ में मोहन राकेश की प्रतिपत्ति मौलिक, नवीन और ठोस है। पहले तो राकेश कला के लिए सिद्धांत के विरोधी हैं और इसे व्यर्थ बतलाते हैं। उनकी स्पष्ट धारणा है कि प्रतिबद्धता की बात में अपने या अपनी कला के संदर्भ में न सोचकर जीवन और उसके यथार्थ के संबंध में ही सोचता हूँ। मैं अपनी कला के से प्रतिबद्ध हूँ क्योंकि अपने परिवेश और उसके निरंतर बदलते यथार्थ से प्रतिबद्ध हूँ। जीवन से हटकर अपने अकेलेपन में प्रतिबद्धता मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। 3. कहने का तात्पर्य यह है कि राकेश का सारा बल अपने परिवेशीय यथार्थ पर है। वे उसे ही गहराई से पकड़ने में विश्वास रखते हैं। ध्यान से देखें तो परिवेश के प्रति यहाँ संसिक्ति और उसी की प्रतिकृति कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक प्रकार से जीवन के प्रति राकेश की गहरी निष्ठा का ही प्रतिफल है। नोट 1. मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 36। 2. मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 57। मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 73। पृष्ठ 48। 12. राकेश ने अपनी लेखन प्रक्रिया के संबंध में भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। उनके कहानी लेखन के पीछे जो कारण रहे हैं वे ये हैं। 1. अपने या दूसरों के जीवन के जो सूक्ष्म द्वंद्व और अंतर द्वंद्व राकेश के कहानी लेखन का पहला संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। 2. कवि के रूप में गति न तलाश कर पाने के कारण भी राकेश कहानी लेखन के प्रति अग्रसर हुए। 3. राकेश का विश्वास था कि जीवन के किसी भी हिस्से या टुकड़े किसी मूड, किसी चरित्र या किसी भी संदर्भ को कहानी में ईमानदारी से उतारा जा सकता है। 4. कहानी परिवेश का प्रतिबिंब है और हर साधारण आदमी नित्य प्रति कोई न कोई कहानी जीता है, अतः जीकर पचाई हुई कहानी को कहानी में ही उतारा जा सकता है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मोहन राकेश का अपने सृजन में मौलिक होना और ईमानदार होना इस बात का संकेत है कि वे अपने आप में एक पूर्ण रचनाकार थे। उनकी साहित्यिक और सैद्धांतिक मान्यताएं नवीन, मौलिक और नई दृष्टि का प्रकाश उद्गीरित करने वाली हैं। इतना ही नहीं, राकेश ने कहानी विषयक जो मान्यताएं प्रस्तुत की हैं उनमें चिंतन की स्पष्टता तो है ही, प्रस्तुतिकरण भी सादगी है। यदि उनके द्वारा कथित प्रतिमानों और प्रतिपत्तियों के आधार पर ही राकेश के कहानी साहित्य का मूल्यांकन करें तो वह खरा उतरता है। राकेश की कहानियां परिवेश के यथार्थ को व्यक्त करने वाली, गंभीर चिंतनापूर्ण, ईमानी शैली में लिखित मानवीय संबंधों की कहानियां हैं। उनका शिल्प कथ्य के अनुरूप है। एक वाक्य में राकेश की कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। उनमें निरूपित चरित्र परिस्थितियों के घात संघात को व्यक्त करते हैं। वे मनुष्य हैं और उनका परिवेश यथार्थ है। राकेश ने एक निर्वैयक्तिकता और निसंगता के साथ अपने चरित्रों को प्रस्तुत किया है। उनका शिल्प अनुभूतियों के तल से स्वतः स्फुरित हुआ है।